नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। आकर तेरे द्वार पे तेरा ही दीदार करूं, तू मुझको पुकार ले, तेरे लिए मैं हरदम रहूं, तेरा घर है मेरा मन, मेरे तेरा वचन, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें। यादों में तेरे हर पल रहूं, तेरे वचन में निभाता रहूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं मरूं, तेरे कदम पर हरदम चलूं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने सभी उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक में से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने इसके पृष्ठभूमि को देखा था और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय एक से अध्ययन आरंभ करते हैं। और आपको यह अध्ययन बहुत ही रोमांचकारी नहीं लगेगा, परंतु यह वास्तव में रोमांचकारी ही है। जी हाँ, मैं आशा करता हूँ कि हम इस अध्ययन में परमेश्वर के आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि इसमें हम में से प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के जीवन के लिए संदेश है। यह विशेष करके जवानों के लिए है, युवतियों के लिए है और यह हर एक प्रकार के लोगों के लिए है। यह उस समय के वचन है जब जवान जैसे सदा ही जीवन संबंधित प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं, ये पा सकते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने फिर से एक बार हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम नीति वचन की पुस्तक अध्याय एक से जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से हमें से प्रत्येक भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए आशीष का कारण बन सके। आप हमें से प्रत्येक से बोली और बातचीत कीजिए, आप हम सब की सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। आप उनकी भी सुधि लें, उनकी सहायता करें, ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त कर सकें। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि अध्ययन के आरंभ ही में आप एक बात पर ध्यान दें कि यह क्रम रहित लेख नहीं है, इनका विशेष संदेश है। मैं अनेकों को जानता हूं जो सोचते हैं कि हम कहीं से भी नीति वचन चुनकर काम में ले सकते हैं। मेरे विचार में ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जब हम किसी नीति वचन को अलग करके देखते हैं तो हमें उसे उसके संदर्भ से वंचित नहीं करना है। जी हाँ, हीरा अपने स्थान पर ही अच्छा लगता है और नीति वचन अपनी पुस्तक में ही पूर्ण अर्थ रखते हैं। कुछ लोगों में नीति वचन को पढ़ना एक मानसिकता बन गई है। किसी ने कहा, मुझे शब्दकोश पढ़ना अच्छा लगता है, परंतु उसमें कहानियां बहुत छोटी होती है। संभवतः आप भी नीति वचन के विषय में ऐसा ही सोचते हैं, परंतु मैं आशा करता हूं कि आप इसे हमारे इस अध्ययन में भिन्न तरीके से या भिन्न रूप से देखेंगे। तो आइए आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक उसके एक अध्याय और उसके एक पद को पढ़ें। नीति वचन एक अध्याय उसके एक पद में लिखा है, दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इस पद से सुलेमान लेखक सिद्ध होता है। लिखा है, दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। परंतु स्पष्ट है कि सुलेमान ने अन्य स्रोतों से भी नीति वचन का संग्रह किया था। वह सब नीति वचनों का संपादक था, परंतु कुछ नीति वचन उसने स्वयं लिखे थे। यह भी कहा गया है कि उसने इस पुस्तक में दिए गए नीति वचनों से कहीं अधिक नीति वचन लिखे हैं। जी हाँ, इस पुस्तक का प्रथम भाग बुद्धि और मूर्खता की तुलना है। इसे आप अध्याय एक से अध्याय नौ में पाएंगे। युवक घर में है और जीवन में कदम रख रहा है। युवक जीवन में कदम रखता है तो परमेश्वर उसे निर्देश देता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। नीति वचन एक अध्याय उसके दो से पांच पद में लिखा हुआ है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। मेरे मित्रों, इस अंश में 10 शब्द काम में लिए गए हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द प्रतीत होते हैं। वे निसंदेह परस्पर संबंधित हैं, परंतु वे एक ही अर्थ नहीं रखते। मैं प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना चाहता हूं। वे ना तो पर्यायवाची शब्द हैं और न ही प्रभावी आरंभ के लिए काम में लिए गए हैं। हमें कहा गया है कि परमेश्वर के वचन का प्रत्येक शब्द खरा है, अतः आइए हम उन्हें देखें कि क्या है। पहला शब्द है बुद्धि। बुद्धि का अर्थ क्या है? धर्मशास्त्र में बुद्धि का अर्थ है ज्ञान के सदुपयोग की क्षमता। केवल इस पुस्तक में बुद्धि शब्द 37 बार अर्थात 37 बार आया है। बाइबल में यह शब्द एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है ज्ञान का सदुपयोग। अनेक बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान से परिपूर्ण है, परंतु उनमें बुद्धि की कमी है। ध्यान दीजिए, वे अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। पुराने नियम में बुद्धि से अभिप्राय वही है जो नए नियम में विश्वासियों के लिए इशू है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:30 में पौलुस लिखता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ज्ञान प्रथम है। आज विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु ज्ञान है, और ज्ञान ग्रहण करने का अर्थ है प्रभु यीशु को ग्रहण करना। फिलिपियों की पत्री 3:10 में पौलुस अपनी लालसा को प्रकट करता है कि मैं उसे जानूं। ओह, प्रभु यीशु को जानने की यह लालसा हमें अभिभूत कर ले। हमें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः ज्ञान बुद्धि प्रभु यीशु है। बुद्धि हमारे ज्ञान के सदुपयोग की क्षमता है। मसीह को जानना किसी को मूर्ख बनाना नहीं है। आप इसे जान लें, यह बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। मैंने एक बार एक कार के पीछे में लिखा हुआ देखा, बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर की खोज करते हैं। मेरे मित्रों, आप में कुशाग्र बुद्धि न हो, परंतु मसीह को ग्रहण करके उसे जानकर आपको बुद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा दूसरा शब्द है। नीति वचनों में शिक्षा शब्द 27 अर्थात 27 काम में आया है। कहीं कहीं इसी इब्रानी शब्द का अनुवाद ताड़ना किया गया है। यह एक रोचक बात है। जी हाँ, नीति वचन 13:24 में आप सुने लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। शिक्षा देने का अर्थ है अनुशासन सिखाना। आज यह सत्य को भुलाया जा चुका है और भुलाया जा रहा है। हमारे समाज परमेश्वर के वचन से सुसंगत नहीं है। कहा जाता है कि अपराधियों को जेल में अनुशासन सिखाया जाता है और उनका जीवन सुधारा जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यह अपराधियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार नहीं है। बाइबल में उनका न्याय और दंड की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर, जब आप अपने पुत्र को अनुशासन सिखाते हैं तो वह उसके निर्देशन का एक भाग है। आपका उपदेश उसे दंड देना नहीं है। जी हाँ, आप उसकी ताड़ना तो करते हैं, परंतु अनुशासनता या अनुशासनाधीन उसे शिक्षा देते हैं। हम प्रायः सुनते हैं, उस बच्चे को दंड की आवश्यकता है, परंतु उसकी ताड़ना करना दंड देना नहीं है। आप भी अपने बच्चे की ताड़ना करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? उसे दंड देने के लिए या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए? जी नहीं, उसे अनुशासन द्वारा शिक्षा देने के लिए। हमारे उद्देश्य निरुद्देश्य हो गए हैं। हम अपराधियों को अनुशासित करते हैं और अपने बच्चों को दंड देते हैं। हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को अपनाना है। मेरे प्रियो, आज भी मैं अपने उस बचपन के दिन को स्मरण करता हूँ जब मेरे पिता मुझे किसी गलती पर दंड दिया करते थे। इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। वह मुझे अनुशासन में लाना चाहते थे, मुझे सिखाना चाहते थे, और इसका प्रतिफल आज मैं देखता हूं कि मैं आपके मध्य में प्रभु के वचन को बांट रहा हूं। जी हाँ, आज हमारे स्कूल शिक्षा की नई विधि का पालन करते हैं। अनुशासन द्वारा शिक्षा देने की पुरानी विधि के बारे में आपका क्या विचार है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वह तो अब है ही नहीं। मेरे विचार में ताड़ना घर में और स्कूल में अत्यधिक आवश्यक है। किसी ने एक पिता से पूछा, क्या आप अपने बच्चों की पिटाई करते हैं? पिता ने उत्तर दिया, केवल आत्मरक्षा के लिए। जी हाँ, आज ऐसा ही है। बच्चे माता पिता का लालन पालन कर रहे हैं। वे माता पिता को अनुशासन सिखा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने हाल ही में एक युवक के बारे में सुना कि वह अपने माता पिता को सिखाता था कि उन्हें कैसा होना है और क्या करना है। यह युवक जमानत पर छोड़ा गया अपराधी था। मेरे विचार में उसे माता पिता की निर्देशों की आवश्यकता थी, परंतु उसके द्वारा नहीं। उन्हें अपने पुत्र को अनुशासन सिखाने के निर्देशों की आवश्यकता थी, वरन वर्षों पूर्व उन्हें यह सीखना था और अब यह बहुत देर हो चुकी थी। मेरे प्रियो, शिक्षा का अर्थ है अनुशासनाधीन शिक्षा ग्रहण करना। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता इस विधि में सर्वोत्तम है और मेरे विचार में मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है और मैंने शिक्षा पाई है जब वह मुझे ताड़ना के लिए ले गया। उसकी ये शिक्षाएं अति प्रभावी थी। समझ की बातें समझे। समझ का अर्थ है बुद्धिमानी। इसका एक और शब्द है विवेक। हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे बुद्धि अर्थात पवित्र बुद्धि को बहुतायत से उपयोग करने की आशा करता है। आगे हम देखते हैं धर्म। धर्म का अर्थ है धार्मिकता, जिसका वास्तविक अर्थ है उचित व्यवहार। हमारा समाजशास्त्र का शिक्षक कहा करता था कि उचित तुलनात्मक होता है। वह पूछा करता था, उचित क्या है? उस समय तो मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था, परंतु अब जानता हूं कि परमेश्वर ने जिसे उचित कहा वही उचित है। परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया है। मैं न तो सूर्योदय करवा सकता हूं और न ही सूर्यास्त करवा सकता हूं। परमेश्वर ही अपने जगत का संचालन करता है। उसी ने ज्योति को बनाया है और उसी ने अंधकार को भी बनाया है। परमेश्वर ही कह सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अतः यदि आप पूछें कि किसी काम को करना सही है या गलत है, तो परमेश्वर से पूछें। यदि वह कहता है कि कोई काम सही है, तो वह सही है, और यदि वह कहता है कि कोई काम गलत है, तो वह गलत ही है। सही और गलत तुलनात्मक शब्द नहीं है। वे केवल एक सामान्य मनुष्य की बौद्धिक उपज हैं। प्रचलित विचार यह भी है कि जो बहुमत करता है वह मानदंड बन जाता है, वह प्रतिमान बन जाता है। यही जो आज की बेईमानी और अनैतिकता का मुख्य कारण है। सही या उचित और गलत या अनुचित इस प्रकार तुलनात्मक हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि वे ऐसा नहीं है। जी हाँ, ज्योति और अंधकार के समान वे परिशुद्ध हैं। आगे शब्द है न्याय। न्याय का अर्थ है निर्णय लेना। विश्वासी अपने जीवन के चौराहे पर आता है, उसे अपना मार्ग चुनना होता है, एक निर्णय लेना होता है। और जीवन में प्रत्येक मनुष्य के लिए एक ऐसा समय अवश्य आता है कि उसे स्वयं का निर्णय लेना होता है। एक बार मुझे दो कलीसियाओं से निमंत्रण मिला। मैं नहीं जानता था कि किस ओर जाऊं, अतः मुझे प्रभु के समक्ष आने की आवश्यकता पड़ी और साथ ही कुछ बातों को परखने की भी। और इस प्रकार मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे कहां जाना है। हमें निर्णय लेना होता है और हमें परमेश्वर की संतान के सदृश निर्णय लेना होता है। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, विशेष करके जब हमारे जवानों को अपने नौकरी के लिए विवाह के लिए और अच्छे परिवार के लिए चयन करना होता है तो वे दुविधा में पड़ जाते हैं। वे अपने मित्रों से या अपने सहयोगियों से सहायता मांगते हैं। लेकिन सबसे अच्छी और भली बात यह है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे सहायता मांगे, तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। आगे शब्द है निष्पक्षता। यह आचरण की अपेक्षा एक सिद्धांत है। परमेश्वर की संतान नियमों के अधीन नहीं, अति उत्तम सिद्धांतों के अधीन है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 22 पद में एक महान सिद्धांत है। लिखा है, धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। विश्वासी जो भी काम करे उत्साह से करना चाहिए। मसीही आचरण प्रायः अंडों के छिलकों पर चलने के जैसा है। मनुष्य कहते हैं, मैं नहीं जानता कि करूं या ना करूं। मेरे मित्रों, सिद्धांत की बात तो यह है कि यदि आप उत्साहपूर्वक काम नहीं कर सकते तो उस काम को आप ना करें। हम जो भी काम करते हैं उससे हमें बड़ी आशा, उत्साह और आनंद के साथ करना चाहिए, अन्यथा उस काम को पूरा करने पर भी हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। यदि हम कुड़ कुड़ करके काम करते हैं तो हमें वो आशीष प्राप्त नहीं होगी। हमें अपने मन में पूर्ण आश्वासन के साथ अपने काम को सही समझना है। हमें काम करने के बाद अपने विवेक में दोषी नहीं ठहरना है। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। यदि आप बाद में कहें, काश मैंने ना किया होता, तो यह आपके लिए गलत है। उन विषयों में जब धर्मशास्त्र कुछ नहीं कहता, तब यह आपके मार्गदर्शन के लिए एक महान सिद्धांत है। यदि आप अपने कल को देखकर कहें, हालेलुया, कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, तब आप जान ले कि आपने जो किया वह उचित काम था। मेरे प्रियो, एक और सिद्धांत है, हमें एक दूसरे की दुर्बलताओं को सहन करना है, ना कि स्वयं को ही प्रसन्न करना है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि अपने आप को प्रसन्न करने के लिए दूसरों की हम सहन नहीं करते। हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना है, क्या इस काम के द्वारा मैं अपने पड़ोसी या मसीह में अपने भाई को दुख पहुंचा रहा हूं या दुख पहुंचा रही हूं। ये आचरण के महान सिद्धांत हैं, जिनके पद दर्शन में विश्वासी को रहना है। आगे हम देखते हैं एक अध्याय के 4 पद में भोलों को चतुराई अर्थात दूरदर्शिता अर्थात अपने कार्यों में बुद्धिमानी रखें। परमेश्वर की संतान को मूर्ख नहीं होना है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बुद्धिमान बने। मुझे एक युवा दंपति को परामर्श देना स्मरण आता है। वे प्रचार क्षेत्र में जा रहे थे। वे आंख बंद करके प्रचार क्षेत्र में निकल पड़े। मैंने उन्हें अपनी राय सुना दी थी कि वे इस काम में अयोग्य हैं, अतः वे वहां ना जाएं। उन्होंने वहां अपने जीवन को ध्वंस कर लिया। वे बुद्धिमान नहीं थे। उन्होंने उस परिस्थिति में चतुराई का प्रदर्शन नहीं किया था। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। जी हां, यह हम सब के लिए अति आवश्यक है। आगे हम पढ़ते हैं जो शब्द है जवान को ज्ञान अर्थात उपयोगी जानकारी। मुझे अपने महाविद्यालय के समय की घटना याद आती है। एक नारा आज भी याद है, ज्ञान का अगला कदम है यह जानना कि उसे कहाँ खोजें। मेरे महाविद्यालय के सामने एक स्कूल था जिसके बाहरी पट पर लिखा था, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मेरे प्रियो, यह एक कारण है कि बाइबल सदा साथ आप रख सकते हैं और उसे पढ़ना भी आप सीखें। यदि आप नहीं जानते तो आप यह तो निश्चय ही जानते हैं कि आप उसे कहाँ खोजें। क्योंकि बाइबल में सारी बातें आपके लिए लिखी हुई है। आगे हम देखते हैं, शब्द है विवेक, अर्थात दूसरों का ख्याल रखना। यह उन युवाओं के लिए है जो आम तौर पर दूसरों का ख्याल नहीं करते। किसी ऐसे व्यवसायी से आप भेंट करना चाहें जो दूसरों का ख्याल करता है, तो वास्तव में बड़े आनंद का कारण होता है। एक बार मैं यात्रा पर जा रहा था कि मेरा एक मित्र मेरे लिए एक स्वेटर लेकर के आया, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंड थी। वह मेरा ख्याल करता था। जी हाँ, यह मसीही विश्वासियों का गुण होना चाहिए, एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए। नीति वचन की पुस्तक हमारी सहायता करती है कि हम एक दूसरे को समझें, बुद्धिमानी को ग्रहण करें। और तब हम इसमें यह भी देखते हैं कि नीति वचन हमारी सहायता करेगी कि हम समझें कि ये अनुपम गुण हमारे जीवन में अपनाए जाने हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज नीति वचन की पुस्तक के द्वारा हमें इस बात का स्मरण दिलाया गया है कि हमारा विवेक, हमारा बुद्धि, हमारा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। यदि आज हमारा आचरण परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तो आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और नीति वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, ताकि हम एक सहायता करने वाला, एक दूसरे की चिंता करने वाला, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला और एक दूसरे की सहन करने वाला व्यक्ति बन जाए। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद।